الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا روحانی زبان ہے توبہ. جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے کوئی گناہ کرتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی جو گناہ ہوئے جو نافرمانی ہوئی میں اللہ کے حضور ان گناہوں خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگوں اسے ہی توبہ کہا جاتا ہے. توبہ کے معنی ہے رجوع کرنا اور توبہ کے معنی ہے لوٹنا. اب لوٹتا تو آدمی جب ہے جب کہیں غلط ہے. آپ کہیں جاتے نا کہتے میں وہاں سے واپس لوٹا میں فلا جگہ گیا میں واپس آیا میں واپس لوٹا تو توبہ کے معنی رجوع کرنا لوٹنا. تو گناہگار کہاں جاتا ہے جس سے وہ لوٹتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ اس کی نگاہ کرم سے دور ہو جاتا ہے اور جب دور ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے تو واپس لوٹتا ہے. واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. گناہوں پر نادم ہونے کو توبہ کہتے ہیں. شرمندگی کو توبہ کہتے ہیں. جو کچھ ہم سے ہوا وہ غلط ہوا اس احساس ندامت کو توبہ کہتے ہیں. کہتے ہیں اس نے توبہ کر دی اس نے توبہ کر دی ہم توبہ کر رہے ہیں آؤ سب مل کر توبہ کریں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ رجوع کرنا لوٹنا. یعنی ہم جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تھے گناہوں کی وجہ سے ہم پھر واپس آئے پھر اس کی رحمت کو طلب کریں. اور اللہ تبارک و تعالی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ ایک مسافر اونٹ پر سفر کر رہا اس کا ذات راہ بھی اونٹ پر ہے. ذات راہ سے مطابق کھانے پینے کی چیزیں پہلے زمانے میں جب سفر ہوتے تھے تو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے. جیسے کہ توشے دار بھی ستو رکھ دیا شربت رکھ دیا اور بہت ساری چیزیں روٹیاں رکھ دی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں قرون وغیرہ تاکہ راستے میں صحرا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں سے خریدے. جیسے آج کل آپ ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں تو راستے میں ہوٹل ہیں دکانیں ہیں کہیں چائے پی لی کہیں کھانا کھا لیا. تو اس زمانے میں ایسی سہولت نہیں تھی تو اس کو کہتے ہیں ذات راہ یعنی راستے کا سامان کھانے پینے کا. تو اونٹوں پر مسافر سفر کرتے تھے تو راستے میں نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی مکان ہے بالکل دب و دب صحرا یعنی اوپر آسمان کے نیچے زمین ریتیلی زمین ریتیلے دھرتا کوئی پانی کا چشمہ نہیں. کہیں اتفاق سے کوئی مل جائے تو آپ کی قسمت کے پانی آپ کو مل جائے ورنہ تو سفر کرنے والے مسافر پانی کا ایک مشکلہ ساتھ رکھتے تھے قرون ساتھ رکھتے تھے کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ رکھتے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں اسی مثال کو بیان کرنا ہے. فرمایا ایک مسافر اونٹ پہ سفر کر رہا ہے اس کا ذات راہ کی اونٹ پر وہ کہیں سستانے کے لیے بیٹھا اور اس کا اونٹ غائب ہو گیا. अब बताओ तुम कितनी परेशानी हो, यानी जो खाने पीने का सामान है वो भी ऊपर, जो पहनने के कपड़े के जो भी चीज है वो भी ऊपर और वो गायब। अभी बिल्कुल तने तनाव से हटा में है, न कोई आतंक ना आतंकदार, कोई नजर इसको नहीं आ रहा। कितनी परेशानी हो उसके साथ को, खाने पीने का सामान भी गया, दीकर सामान भी गए, सवारी का प्रूफ भी गया, अब पैदल तो सफर कर नहीं सकते। और रेत ऐसी होती थी कि आदमी कदम रखे तो धस जाती है, इतनी रेत। ऐसे मौके पर कितना वो परेशान होगा आदमी। अब ऊंट को तलाश कर रहा है लेकिन वो दूर दूर का ही उसको नजर देगा। मायूस होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। किसी के पास अब मेरी मौत, मौत के इंतजार जाहिर है, खाने पीने की चीज नहीं है, जब पानी नहीं मिलेगा प्यासा मर जाए, खाना नहीं होगा तो भूखा मर जाए। बिल्कुल मायूस होकर जब वो बैठ गया थक हार कर, अचानक ऊंट आ गया। उस मायूसी की कैफियत में अचानक कहीं से ऊंट आकर उसके पास खड़ा हुआ और उसके बाद ऊंट पर नजर हुआ जो सामान था उस पर खाने पीना भी मौजूद है, उसके कपड़े हर चीज मौजूद है। नदी बात ऐसे रात को सलाम करना चाहिए। गौर करो उस मायूस शख्स को जो बिल्कुल हर तरह से मायूस बन के मौत के इंतजार में है, जब अचानक वो ऊंट मिलेगा जिसकी वो तलाश कर रहा था, कितनी खुशी होगी उसकी। हो गया, यानी मैं तो मौत का मुंतजर था, अब न खाने पीने की कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, और इस सहरा में मैं कहीं जा भी नहीं सकता, इसलिए सवारी नहीं, कम से कम सवारी को तो आदमी तरफ करना शुरू कर दे। मैं कहीं भी पहुंच जाऊं कोई आदमी मुझे नजर आ जाए, सवारी भी नहीं, सवारी समेत हर चीज गायब। ऊंट सवारी था ना, उस पर सामान था, सब गायब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर करो उस मायूस शख्स को जब ऊंट अपने सामने नजर आएगा और सारी चीजें मौजूद हैं, कितनी खुशी होगी। जितनी खुशी उस आदमी को होगी उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को तौबा करने से होती है, उससे ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को तौबा करने से होती है कि जब कोई गुनाहगार बंदा वापिस पलटता है, अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाता है और गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत के साथ आंसू बहाता है, खालिक कायनात खुश होता है अगले पिछले सारे गुनाहों। ये है उसकी शादी, इतना वो खुश होता है तौबा करने से। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हर वक्त तौबा करें, हर लम्हे तौबा करें, हर नमाज से बाद तौबा करें। और तौबा करने का तरीका क्या है, ये नहीं कि यात्रा में तौबा कर रहा हूं, नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फार कबूल करें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तग़फार अगर पढ़ ली जाए तो पूरे दिन में 500 अस्तग़फार होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार की हदीस शरीफ इसका मफहूम यह है कि मैं खुद एक दिन में 70 मरतबा तौबा करता हूँ, और दूसरी हदीस शरीफ फरमाया एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ, अस्तग़फार करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम क्या उनको जरूरत थी, उनको तौबा की जरूरत है, उनको अस्तग़फार की जरूरत नहीं? अरे जिनके दम हिलाने से न जाने कितने बख्शे जाए, जिनके दर हिलाने से कितने बख्शे जाएंगे, उनको क्या जरूरत। हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए सरकार फरमा रहे, मैं इस मकाम पर होने के बावजूद जब मैं अस्तग़फार पढ़ रहा हूं तो तुम पर कितना लाजिम है कि तुम पढ़ो। हमें समझाने के कुरान का आसा अलिया का आसा का रब्बू का मकाम महमूदा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम करीब, हम आपको मकाम महमूद पर बिठा देंगे। हुजूर के मकाम महमूद क्या है, फरमाया मकामी शफात, मकामी शफात है जिस पर बैठकर मैं शफात करूंगा, हम का झंडा मेरे हाथ में होगा, हुजूर की मेरे हाथ में होगी, सब चीज मेरे हाथ में होगी, क्या पिछले और क्या अगले सब मेरी तारीफ कर रहे हो। सबसे पहले मैं सजदे में सर रखूंगा, खालिक कायनात फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, जिसकी सिफारिश करेंगे बख्श दिया जाएगा, जिसकी शफात करेंगे हम गुनाहों को माफ करेंगे। जिनके चार हो, जिनका ये मकाम हो, वो फरमाने मैं जिनमें 70 मरतबा और दूसरी अर्थ में फरमाने 100 मरतबा मैं इस्तगफार करूं। तो हम पर कितना लाजिम है कि हम पढ़े, हमारी कैफियत में भी हमको बेसबर, हमने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा खता किया। ये बेखबरी है, किसी से कहो ना झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, धोखा ना दो, किसी के हुकूक को कसम ना करो, अरे बड़े के तो देखा जाएगा दुनिया में तो कब सूर खा रही, गीबत कर रही, लोगों को धोखा देकर पैसा कमा रहे, अजी तो रिश्तेदारों के हुकूक को कसम कर रहे, बेवाओं यतीमों के हकूक को असर कर रहे, कोई देखने वाला नहीं। ये नहीं पता एक देखने वाला है जो तुम्हें देख रहा है, और वो ऐसे देखता है जैसा वो दिन की रोशनी में देखता है, ऐसा ही तारीखी में भी देखता है। जैसे वो तुम्हारे जाहिर को देखता है ऐसे ही तुम्हारे बातिन को देखता है, जैसे तुम्हारे जाहिर आमान को देखता है ऐसे ही तुम्हारे दिल में छुपे हुए ख्याल को, राजों को भी देखता है। उसका हॉबी मरे के देखा जाएगा, अभी तो कर दो साहब आए, यानी इससे बातें मैं बता रहा हूं, कोई सुनने नहीं बात नहीं, तो परेशान है, काम नहीं है, अच्छा ठीक है दुआ करेंगे। हाँ एक दुआ और करें, जब काम मैंने शुरू किया है बहुत सा नजायज हो, थोड़े से नजायज की क्या मुझका, तो पता गलत काम है, काला काम है, सब उससे पैसे दे दिया जाए, बस वो कमा के उसके बाद मैं तौबा करूंगा कि बस अब ये। मैंने कहा अच्छा, यानी गलत काम करके गलत पैसा हासिल करके फिर आप तौबा करेंगे, आपको पता है कि ये करने के बाद आप जिंदा रहेंगे। अब कानून अगर ये पता हो कि मैं ये गलत काम कर लू, मैं तौबा कर लूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा जब तक, अगर तुम्हें ये गारंटी है तो कर लो, गारंटी है। तुम अभी ये सोच ही रहे हो कि गलत काम करूंगा मौत आ जाए जब, या तो गलत काम करने के फौरन बाद मौत आ जाए, तौबा मोहलत ही ना मिले तब क्या करो। कितना बाकी है इंसान, मैं ये काम कर लू उसके बाद तौबा कर लू, मैंने इसको धोखा दे दिया, पैसे छीन लिए, धोखा के फिर मैं तौबा कर लू, मैं गलत काम करके पैसा जमा कर लू फिर तौबा कर। अच्छा अल्लाह तबारक तआला तंबीह करता है, झटके देता है, हिलाता है। एक साथ में गलत काम किया, पकड़े गए, इत्तेफाक से किसी तरह छूट गए, अब उसकी तफसील बताने की जरूरत है, छूट गए और चुपके सीधे दरगाह शरीफ में आए और आकर कहते हैं वाली साहब अशरफ मशाई हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफ के जिलानी का बरता आपको हयात के मौजूद पर मैं आ गए क्यों तू ठीक है तौबा करो एक मतलब और एक मतलब क्या मतलब जरा पैसा ज्यादा है ना एक चक्कर और लगाऊंगा उसके बाद तौबा करो तो हर बड़ा हुआ दिलदा दिलदा ही जाने की रहती अल्लाह ने इतना काम किया इतना बड़ा गलत काम करने के बाद छूट गया अरे सच्चे दिल से तौबा कर सच्चे में जिंदा क्या आइंदा नहीं करूंगा लेकिन वो शैतान जो है ना वो दिल में पैदा करता है एकदम लाखों रुपए आएंगे करोड़ों रुपए आएंगे करोड़पति बन जाओ ये नहीं पता कि वो गलत पैसा जब आता है तो अपने साथ बीमारी लेकर आता है परेशानी लेकर आता है मुसीबतें लेकर आता है सुकून गायब हो जाता है आप देख रहे बड़े बड़े हजार गज के बंगलों में रहने वाले दो दो हजार गज के बंगलों में रहने वाले जिनका किचन इतना बड़ा है कि जब एक गरीब का पूरा घर ऐसे ऐसे लोग मौजूद है यही मौजूद है हमारे शहर में आप डिफेंस में जाकर देखने क्रिप्टन में जाकर देखने बाजारी लाइन में जाकर देखने जितने इलाके हैं उनका किचन इतना बड़ा है जो गरीबों का पूरा घर उसके अंदर आ जाए नर उदार गद्दे बेहतरीन कालीन बेहतरीन एसी लगे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही नींद की नेमत से महरूम विलियम 5 खा रहे विलियम 10 तक पहुंच गए नींद नहीं आ दलित को देखो, वो खंजूर के दरख्त के नीचे लेटा था सो रहा, कोई नीम के दरख्त के नीचे सो रहा, बेखबर सो रहा, ऐसी गहरी नहीं जो उठाओ तो उठता भी नहीं। और जो एसी में सो रहा, नर्क उदास गलियों में सो रहा, नींद गाय, डॉक्टर उनसे दवाई ले रहा, उठा मीडियम फाइव खाओ तो मीडियम टैन खाओ, अल्लाह ने नेमत से महरूम कर दिया, क्यों? पैसा गलत है, गलत पैसा आएगा सुकून गारत हो जाए। एक पैसा भी अगर कमाओ हराम कमाओ, जब वो हराम एक रुपया घर में आएगा उसी में सुकून है, उसी में आफियत है, यहां सुकून है और आखिरत में भी सुकून। और जो गलत पैसा है यहां भी बेसुकूनी है, कब्र में भी बेसुकूनी है, और आखिरत का हाल तो अल्लाह जानता है कितनी बड़ी सजा है। लेकिन इंसान इतना नाशुकरा है और बेखबर है, तो कहते हैं कि यहां कर लो वहां देखा जाए, मरेंगे तो देख लें, जब मरेंगे तो पता चलेगा क्या देखोगे, अल्लाह का अजाब देखोगे, उस वक्त पलटाओगे, काश हम दुनिया में तौबा कर दे। इसलिए इंसान को चाहिए हर वक्त अल्लाह से डरता रहे, हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे। अच्छा बात तो कहते हैं हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने तो कभी शराब नहीं पी, हमने तो कभी कोई बिनाकारी नहीं किया, हमने कभी कोई चोरी नहीं किया, हमने तो बना, हम तो बना दावा तो करे जिसने ये काम किया, सिर्फ यही गुनाह नहीं है, किसी का दिल दुखाना ये भी गुनाह है, दिल आजारी ये भी गुनाह है, अमानत में खयानत ये भी गुनाह है, बेवाओं यतीमों का मान गसब करना ये भी गुनाह है, चुगली करना गीबत करना ये भी गुनाह है, ये सारे गुनाह है। और कभी कोई गलत जबान से ऐसा निकल गया जो अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो गई, इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करने से उसकी माफी हो जाती है। ना दानिश्ता तौर पर जबान से बहुत से जुमले निकल जाते, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इंसान को जरा सा इख्तदार मिलता है वो फिरौन बन जाता, जरा सा इख्तियार मिलता है फिरौन बन जाता, हर जबरदस्त अपने जेर दस्त को दबाने की कोशिश करता, मैं हाकिम हूं ये मेरा महकूम है, नौकर है, उसे दलील समझता, उसे हकीम समझता, हाकिम कायनात इस बात को पसंद नहीं करता। इसीलिए उसने एक दिन में पांच वक्त ऐसे रखे जिसमें अमीर गरीब वजीर फकीर सबको एक जगह खड़ा कर, नमाज में खड़ा किया या नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि अमीरों की सब अलग हो और गरीबों की अलग हो, पैसे वाले अगली सब में जाएंगे और जो गरीब है वो पिछली सब में नहीं, गरीब अगर पहले आते आ रहे तो वो अव्वल सब में होगा, अमीर अगर आखिर में आया है तो वह आखिर सब। खूबसूरत लोगों की सब अलग है, बस सूरत की अलग है, अच्छे कपड़े वालों की सब अलग है और फटे पुराने वालों की अलग है नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदर। अच्छा फिर एक और हिकमत देखिए अल्लाह ताला की, एक गरीब आदमी नमाज पढ़ने के लिए आया, उसको जगह मिली पहली सब, ठीक है ना, अमीर आदमी नमाज पढ़ने के लिए आया उसको जगह मिली दूसरी सब, दूसरी सब वालों का सर पहली सब वालों के कदमों में होता ही नहीं, जहां उनका पैर है वहां दूसरों का सर है। इस्लाम की शान देखो, अमीर का सर गरीब के कदमों में झुका, जहां गरीब के पैर हैं वहीं अमीर का सर है, कोई दीन दुनिया में ऐसा जिसने सबको एक कर दिया? तुम कैसे भी बंगलों में रहो, कैसे भी लिबास पहनो, कैसी भी जबान बोलो, अपना स्टेटस कैसा भी रखो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम काफिर हैं, नहीं, अल्लाह की नजर में तुम सब एक हो, इल्ला तक्वा, सिवाय तक्वा, इन्ना अकरमकुम इंद अल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बरगोजीदा अगर कोई है तो वो है जिसका तक्वा बेटा, जो मुत्तकी है परहेज़गार, अगर एक गरीब मुत्तकी है तो वो अमीर से बेहतर, वजीर से बेहतर है, बादशाह है, वक्त से बेहतर है, सबको एक सब में खड़ा कर, बराबरी का म्यार ही खत्म कर दिया, हमने म्यार रखा है, जिसके पास कार है तो जरा पूछा है, जो उनके ओहदे पर है ये हमसे बड़ा है, पढ़ाई का म्यार हमने ये रखा, ये करोड़पति है ये बड़ा आदमी है, बड़े लोग हैं, अरबपति है ये भी बड़ा है, इसके पास ओहदा है तो ये बड़ा है, इसके पास चार गाड़ियां हैं ये बड़ा है, इसके पास आठ बंगले हैं ये बड़ा है। इस्लाम ने कहा बड़ा कोई नहीं सिवाय तक्वे, इसके पास कुछ नहीं है सिर्फ तक्वा है, अल्लाह का डर उसके दिल में है, वही सबसे बड़ा, वही सबसे बड़ा अल्लाह के नजदीक। तो बड़ा वही है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा है, बड़ाई उसी को दे देती है जिसको खुदा बड़ा करती है। ये सारी इज्जतें, यानी इज्जत अगर गाड़ी की वजह से है तो गाड़ी छीन जाए तो इज्जत खत्म हो, गाड़ी की वजह से इज्जत है ना, गाड़ी छीन लो इज्जत खत्म हो गई। इज्जत अगर कपड़े की वजह से है तो कपड़े छीन लो इज्जत खत्म हो गई। इज्जत अगर बंगले की वजह से है तो वो बंगला उसे छीन लो इज्जत खत्म हो गई। इज्जत ओहदा और मनसब की वजह से है, वो मनसब छीन गए इज्जत खत्म हो गई। ये कैसी इज्जत, ये तो इज्जत मुस्तार है, ये तो किराए पे नहीं हुई है, ये कैसी इज्जत है। हकीकी इज्जत वो है जो खालिक ने कायनात अता फरमा दे कि वो बोलिए पर सो रहा है, खजूर के दरख के नीचे सो रहा है और आलम इस्लाम पर हुक्मरानी कर रहा है, लोग उसको फारूक आजम के नाम से जानते हैं। असल इज्जत वो है, हमारे हुक्मरान प्रोटोकॉल के साथ घूम रहे हैं, इधर से पाए इधर से पाए, आगे पीछे दाएं बाएं, मोबाइल आगे जा रही है पीछे जा रही है, गाड़ी जिस गाड़ी में बैठे हैं वैसे ही गाड़ी आगे भी जा रही और वैसे ही गाड़ी पीछे भी जा रही, ताकि कभी हमला हो तो पता न चले कि सदर साहब कौन सी गाड़ी में, वजीर आजम साहब कौन सी गाड़ी में, जान में इतना खतरा। और वो खुलाफाए राशिदीन जो असल हुक्मरान थे सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, रूम का एक ही आता है और आकर मुसलमानों से पूछता है तुम्हारे खलीफा का महल कहां, लोग हंस रहे उसको देख, महल उसने कहा हंसने की क्या बात है, कहा हमारा खलीफा महल में नहीं रहता। अरे फिर कहां रहता फारूक आजम, महल में नहीं, कहां नहीं, अरे उनके नाम से तो हमारे बादशाह कांपते हैं, दर्जा बरतान होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह बड़े बड़े सुपर ताकत है, फारूक आजम के तुम्हारे खलीफा के नाम से कांप रहे हैं, तुम कह रहे महल में नहीं रहता। लोग हंसते नहीं महल में, फिर कहां है मुझे मिलना, आओ हम मिला, वो सामने खजूर का दरख्त नजर आ रहा, हाँ उसके नीचे एक आदमी चादर ओढ़ के लेटा हुआ है, उसने कहा यही फारूक आजम, यही खलीफा मुस्लिमीन है। अरे ये मामूली आदमी, उसने दूर से सुनना तू हमारे खलीफा से डरते जीते, आम सा आदमी लग रहा है। आगे बढ़ा, बढ़ता जा रहा है, फारूक आजम की हैबत और जलाल उसमें तारीफ होती जा रही है। क्या मसला, ठीक क्या मसला, जब करीब जाके देखा अल्लाह का शेर सो रहा है, इसके जिस्म पर दर्जा तारीफ हो कांपने लगा और कहता है कि कैसा आदमी है, अभी ये सो रहा है तो मैं कांप रहा हूं, जबकि जागेगा तब क्या हाल, इसकी आंखें बंद है तो मैं कांप रहा हूं, जब आंखें खोलेगा तब मेरा क्या हाल होगा। और वो रूम के इनकी कहता है ऐ फारूक आजम, तुम जिस बेखबरी और बेफिक्री के साथ इस खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे हो, ये इस बात की दलील है कि तुमने अल्लाह की जमीन पर अदन किया है, इस बात की दलील है कि तुमने अल्लाह की जमीन पर अदन किया है, वरना इसमें नाम से तुम नहीं सो। मौत का डर था नहीं, कोई मुझे मार देगा, कोई सिपाही साहब कोई प्रोटोकॉल साहब कोई सिक्योरिटी साहब, नींद आई चादर आदि फैलाई लेट गए, वो ही चादर उपलटा नहीं सो, उनको पता है अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं करता, अब जो अल्लाह से नहीं करता वो सबसे डरता है। कोई आज का हुक्मरान जो खजूर के दरख्त के नीचे जाकर लेट गए, लाश मिलेगी वहीं से, किसी के नहीं लेते, क्यों आवाम का पैसा खाया हुआ, डर है ना, उनको डर नहीं था। अरे वो ऐसे बेखौफ थे कि मदीने तैयबा में जलजला आया, जलजला आता जमीन हिलती है, जमीन हिलने लगी, अल्लाह के शेर ने फारूक आजम ने कोड़ा उठाकर जमीन पर मारा और फरमाया हमने कौन सा गुनाह किया है क्योंकि जलजला आ रहा है, जमीन रुक गई, उसके बाद से आज तक मदीने में गंदगी नहीं
है।
ये है वो अल्लाह से डरने वाले, ये है खशियत इलाह दिल में रखने वाले। वो अल्लाह से डरते थे, पूरी दुनिया उनसे डरती, वो जानते थे कि यही दर्द होने की वजह से नहीं। बैत मुकद्दस फतह करने के लिए जा रही, एक थोड़ा है एक सवाल बोला, पर मैं आगे रास्ते पर मैं सवार हो जाता हूं, तुम पैदल चलो, और आधे रास्ते पर तुम सवार होना, मैं पैदल चलो। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु इसी तरह चले जाए, और पूरी दुनिया में जलजला आ गया, उधम मच गई। फारूक आजम मदीने से रवाना हुए बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए, सब डर रहे अपनी जगह, पूरी दुनिया में सब डर रहे। क्यों डर रहे? क्या फौज लेकर निकले थे? नहीं। असलहा लेकर निकले थे? नहीं। ईमान की दौलत लेकर निकले, अल्लाह का खौफ लेकर निकले, रसूलुल्लाह की मदद साथ लेकर निकले थे, एक गुलाम और एक घोड़ा साथ लेकर चले जा रहे। और लिबास, ये नहीं सोचा कि मैं अच्छा लिबास पहनूं ताकि जब मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो वो मुझे देखे, उन पर असर पड़े, रौब पड़े। वो जानते थे लिबास का रौब कोई चीज नहीं है, असल ईमान का रौब है। मुसलमान की है ना उसके काबिल ईमान की वजह से। कुर्ते पर 15-16 मन के बाद में लिखा 70 से ज्यादा पेमेंट लगे, वो कुर्ता पहने। और जब बैतुल मुकद्दस करीब आने लगा, गुलाम की बारी, पहले आप सवार थे, वो पैदल चल रहा था, आप उसकी बारी, कहा चल जाओ मैं चल रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। या अमीर मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपका एक नाम, आपका रौब है, आपका जनाब है, पूरी दुनिया में दबदबा है, उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला आपकी शोहरत है। फरमाया को क्या होगा, कैसा अजीब लगेगा, आपकी इतनी शोहरत, आप घोड़े की लगाम पकड़ने जा रहे हैं, मैं गुलाम हूं, मैं ऊपर बैठा हूं, आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं रस्सी पकड़ के चलता हूं। जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होंगे उनको पता चल गया है कि आप आ रहे हैं, उन पर एक रौब पड़ेगा, एक आपकी इज्जत है, जनाब है, जानते हो। फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? फरमाया उमर की इज्जत घोड़े से नहीं है, उमर की इज्जत गुलामी रसूल से। उमर की इज्जत घोड़े से नहीं है, गुलामी रसूल से है, तुझे बैठना पड़ेगा। तू बैठकर जाएगा, उमर वो रस्सी पकड़ के जाएगा। और जब इस हाथ में बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, जितने वहां कुफार थे उन्होंने क्या किया, ऐसे करके आपको पेश कर दिया। बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, न कोई लड़ाई हुई, न कोई जंग। और उन्होंने कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, आप इस तरीके से हमारे शहर में दाखिल हुए इसको पता करने के लिए, हमने अपनी मजहबी किताब में ये लिखा हुआ देखा है, हमने खुद पढ़ा है कि पैगंबर आखिर जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खलीफा इस शहर को फतह करेगा, और वो इस हाल में दाखिल होगा कि गुलाम घोड़े पर सवार होगा, वो खुद पैदल जाएगा। हमने ये निशानी पढ़ी, और अगर आप इस तरह ना आते हम कभी बैतुल मुकद्दस आपके हवाले न करते। शान है फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, वो अल्लाह से डरते थे इसलिए किसी से नहीं डरते। तो जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, सब उससे डरते, और जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं वो फिर सबसे डरता, ये मुझे न मार दे, वो न मार दे, ये ना हो जाए, वो ना हो। वो अपने गुनाहों पर नादिम होते थे। तो तौबा के माना रुजू करना, तौबा के माना वापिस पलटना। जब इंसान गुनाह करता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता, उसके कर्म से दूर हो जाता, उसकी नजरे कर्म से दूर हो जाता है, और जब तौबा करता है तो वापिस पलटता है, और पलटकर उसके पास आता है, अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करता है। तो तौबा करने वाले से खालिक कायनात बड़ा खुश होता। और ये जो महीने चल रहे हैं शाबान मौसम, और उसके बाद रमजान मुबारक, अपनी रहमतों बरकतों के साथ हम सब पर साया फिदर होने वाला। हम में से किसको क्या पता अगला रमजान हम देख सकते हैं या नहीं, किसी को पता है? हमें तो ये भी नहीं पता कि ये रमजान देख सकते हैं, एक मिनट का नहीं पता। जब हमारी जिंदगी की बेसबाती का ये हाल है तो किस बात पर अकड़ रहे, किस बात पर गुनाह कर रहे, किस बात पर एक दूसरे की दिल आजारी कर रहे, किस बात पर एक दूसरे के हुकूक को गसब कर रहे। गवर्नमेंट से चाहिए ये महीना शुरू हो गया, हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु इलैह ये पढ़ना शुरू कर दे। फिर देखो अल्लाह की कितनी रहमत के नाते इंसान के मुंह से कोई जुमला निकल जाता है जो खाने में कायनात को नापसंद होता है, जब इंसान ये अस्तगफार पढ़ता है गुनाहों की माफी हो जाती। कोई अमल ना दानिस्तगी में ऐसा हो गया कि किसी की दिन आजारी हो गई, किसी के हुकूक को गसब कर दिया, अस्तगफार पढ़ता है उसके गुनाहों की माफी हो जाती ना दानिस्तगी में। तो अस्तगफार एक ऐसा फेल है, ऐसा अमल है कि जब इंसान ये करता है तो उसके गुनाहों की माफी हो। तो हमें ये चाहिए कि हम हर वक्त हर लम्हे अल्लाह से तौबा करें, हर नमाज के बाद तौबा करें, वादा जो गुनाह ना दानिस्तगी में या दानिस्तगी अस्तन या सहमत जो भी मुझसे सरदर्द हुए अपने हकीक के सच्चे में माफ करें। और जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तायिबु मिनज़्ज़म्बि कमन्ता ज़म्बा लहु, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, यानी अल्लाह ताला उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक औरत से एक गुनाह हुआ और उस गुनाह के नतीजे में वो हामला हो गई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ, नदामत शर्मिंदगी हुई, सरकार की बारगाह में हाजिर क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिता का उम्मी बहा हुजूर मेरे माँ बाप के पास मुझसे ये गलती हो गई, आप उन पर हद जारी कर दी, यानी इस्लाम ने जो जिना की हद जो सजा मुकर्रर की है आप जारी कर दी, इसलिए कि मैं कयामत के दिन से डर रही हूं, उस वक्त जो सजा मिलेगी उससे बेहतर है मैं यही अपनी सजा को पा। सरकार ने फरमाया ठीक, आपने उसके जो सरपरस्त थे उनको बताया, फरमाया इसको घर ले जाओ, इसका ख्याल रखो, जब बच्चे हमल हो जाए तो फिर इसको ले आना, इस पर हट जाए। जब बच्चा पैदा हो गया उसके कुछ दिन के बाद उसको लाया गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया इसको संसार कर दिया, संसार कर दिया गया, जाहिर मौत बातें होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, खुद नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब नमाज जनाजा पढ़ाई तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा कौमी मां, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान, आपने इस बदकार औरत की नमाज पढ़ी, इस गुनाहगार बदकार औरत की। सरकार ने फरमाया उमर ऐसा मत कहो, अरे इसने ऐसे सच्चे दिल से तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीने में तकसीम कर दिया जाए 70 आदमी जो है उनकी निजात हो जाएगी, ऐसे इसने सच्चे दिल से तौबा की, वो जन्नती है, वो खोलती अपने अंजाम को। तो जो तौबा करता है खाने की कायनात उसकी तौबा को कबूल कर देता है, उसके बाद उस पर कोई दाम दाम करना बिल्कुल मुनासिब नहीं। तो इससे ये पता चला कि इंसान कैसा ही गुनाहगार हो लेकिन जब वो वापस पलटता है उसके दिल में ख्याल पैदा होता है मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गुनाह हुआ, मुझसे ये खता हुई, मुझसे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हुई, सत्य दिल से तौबा कर ले और इस यकीन के साथ तौबा करे कि वो खाने के कायनात उसे माफ फरमा देगा, यकीनन वो उसे माफ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु इलैह। इस माह मुबारक में पढ़ने के वजीफे जो हैं वो माहनामा अल अशरफ में शायद हो चुके, शाबान मौसम और रमजान मुबारक में पढ़े जाने वाले वजीफे, और वो अशरे के हिसाब से, यानी पहले अशरे में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, तीसरे में क्या पढ़ना है, शाबान और रमजान दोनों मुकद्दस महीनों के वजीफे, तो आप हजरात माहनामा अल अशरफ स्टॉल से ले और फिर उन बदायूं को पढ़ें। रजत में हमने जो चिंता आपको बताया था, या रजा हो या पत्ता हो या बासित हो, चतुर रजत से शुरू होकर 10 चावान को खत्म होना था। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों ने उसे पूरा कर दिया। और ये भी एक खुशाई बात है कि बहुत से लोगों ने 20 दिन में ही मुकम्मल कर दिया। अमरीका से हमारे पास ईमेल आई, वहां बहुत सी औरतों ने 20 दिन में मुकम्मल कर दिया। राइट में टाइम ही टाइम, और औरतों के पास जितना टाइम है तो उतना भी मर्दों के पास। ये फजूल बातों में और वो फूल के पैकिंग करा करा के जो टाइम जाएगा, तो हमने सबको पढ़ने पे लगा दिया। तो उसमें क्या है, फिर उन्होंने पूछा कि आगे क्या पढ़े, तो हमने आगे भी बता दिया। तब जो हजरात यहां मौजूद हैं और जिन्होंने वो चिंता मुकम्मल कर दिया है, तो उनको चाहिए कि अल्लाह उस सफर शुरू कर दे, या फिर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल नजम भी बातों को नहीं शुरू कर। और ये रमजान मुबारक तक पढ़ना, रमजान में दुआएं ईद उल बहन का जिक्र होगा और उसका तरीका आपको मालूम है। रमजान से पहले जो नशीब होगी उसमें हम बता देंगे, और जब तुम रमजान से शुरू होगा और ईद की 11 तारीख को खत्म होगा। ये तमाम चीजें अपने जहन में रखें। और वैसे पढ़ने के लिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल नजम भी बातों को, इससे बेहतर और कोई चीज, जब से फिरते पढ़िए, उठते बैठते पढ़िए। अगर हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें पूरे दिन में 500 सफर हो, और अगर आप दो पढ़ लें तो 1000 हो जाए। यानी जितना आप पढ़ेंगे उतने गुनाहों की माफी है, बख्शिश है, मगफिरत है, अल्लाह की रहमत है। तो इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखना चाहिए, और जो जो वक्त गुजर रहा है इसको जाया न करें, उसको इबादत में गुजारें, गुनाहों की माफी में गुजारें। और जब अल्लाह तबारक वताला गुनाहों को माफ फरमाता है, तो फिर वो अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है, फिर वो अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है, और इंसान की अच्छी पिछली सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये दो महीने जो है बड़े मुकद्दस और बाकी का। अब इसमें शब बारात है, चांद की 15वीं छठ रहमतों बरकतों वाली रात है। उसमें भी अगर 1000 मरतबा अस्तग़फार पढ़ ली जाए तो ये बेहतरीन गुनाहों की माफी है। आप चाहें तो मगरिब के बाद पढ़ लें, या मगरिब के बाद अगर कब्रिस्तान जाना है तो आने के बाद पढ़ लें। किसी टाइम की पूरी रात में आप 1000 मरतबा अस्तग़फार मुकम्मल करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल नजम भी बात करें, और अपने दिल में अपने जहन में ये ख्याल करें कि मौला मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं, जो भी मुझसे गलती हुई, कल्दन या सहबत, दानिस्ता या ना दानिस्ता, जो भी मुझसे गलती हुई, अपने आप ही सत्य में माफ, जो मैं पढ़ रहा हूं उसे कबूल कर दे और माफ फरमा दे, और मेरे भी अपनी रहमतों के दरवाजे खोल। तो जब इस मुकद्दस रात में ये पढ़ा जाएगा तो फिर आप देखेंगे इसके बाद जो अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी उसका अंदाजा आप कर सकते। कल की बेसकूनी बेकरारी दूर हो जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, राहत मिलेगी, जितने भी उलझे हुए काम हैं खुद ब खुद समझ जाए, सिर्फ उसको पुकारने की देर, और उसको पुकारो सच्चे दिल के साथ, ये सोच के पुकारो कि वो सुन भी रहा है और मेरी दुआ को कबूल भी कर रहा। अल्लाह अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लोग आगे मायूस से समझते कितनी हो रहा, बस ठीक है नमाजें पढ़नी, वजीफे पढ़नी है, कुछ नहीं है, मायूसी ऊपर है, और अल्लाह की दात से मायूसी तो होनी ही चाहिए। देर हो सकती है लेकिन कबूल जरूर करें। इतनी देर से दुआ कर रहा है, इतने अरसे से कुछ नहीं हुआ, वो कहता है बच्चा नहीं हुआ, वो कहता है शादी नहीं हुई, वो कहते नौकरी नहीं हुई, हर एक का अलग अलग मसला है ना, तो उसकी रहमत से मायूस ना हो, दुआ करते रहें। सरकार ने फरमाया दुआ जो कबूल नहीं होती, इंसान कहता है ना दुआ कबूल नहीं होती, इंसान कहता है आज मेरा काम हो जाए, इंसान जज्बात है, अभी मैं मांग रहा हूं अभी मिल जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस शरीफ, जिसका मफहूम यह है कि बंदा तो ये चाहता है यकीन आज मुझे मिले, और खालिक़े कायनात के इल्म में यह है कि यकीन आज इसके लिए बेहतर नहीं है, एक साल के बाद बेहतर है, यह एक महीने के बाद बेहतर है, यह एक दिन के बाद बेहतर है, वो हमसे बेहतर चाहता है। तो तो वो क्या करता है, उस दुआ को महफूज कर देता है और दुआ के बदले अजर उसको अता कर देता है। इसलिए दुआएं जो की जाती है रायका नहीं जाती। आप कहते हैं कबूल नहीं हुई, नहीं, आपकी दुआ महफूज हो गई, उसके बदले आपको अजर मिल गया, आपके नामे अमाल में अजर लिखा जा रहा। घाटा नहीं, इधर है ना उधर है। अगर औरत कबूल हो गई तो भी फायदा है, और अगर नहीं हुई तो महफूज हो गई, अजर मिल गया तब भी फायदा। नामे अमाल में अजर मिला ना, सवाब मिला, नेकियां शामिल हुई तब भी फायदा। तो इसलिए ये जितने भी महीने और ये दिन गुजर रहे हैं, इसको गनीमत समझिए, अपने औकात को मैनेज कीजिए। हमें सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, हर नमाज के बाद क्या पढ़ना है, पूरे अपने औकात को मैनेज कीजिए, उस तरह पढ़िए और जितनी रहमतें बरकतें नेमतें समेट सकते हैं इन दोनों महीनों में समेटें। वैसे तो सारे महीने ही मोहतरम है, लेकिन शाबान और रमजान ये खास तौर पर रहमतों बरकतों वाले, फरिश्ते रहमतें लेकर खड़े, खाते के कायनात अदा कर रहा है, कोई मांगने वाला है हम अदा कर, वो देने के लिए तैयार है और हम देने के लिए तैयार, हम गफलत में पड़े हुए, गलत कामों में पड़े हुए, कहां से रहमतें ना देंगे। तो आज इस नजीद का हासिल ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वा अतूबु इलैह, इसका आप विद करें जब खाली बैठे पढ़ना शुरू कर। अब जिस तरह तरीका आपने बताया, एक तरीका यह है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े पूरे दिन में 500 मरतबा, और अगर हर नमाज के बाद दो तस्बीह पढ़े पूरे दिन में 1000 मरतबा इस्तग़फार हो जाए। तो 1000 मरतबा जब इस्तग़फार होगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं उसकी रहमत के बरकत कितनी ज्यादा होगी, कितने गुनाहों की माफी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने गुनाहों पर नादिम होने, माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची में कबूल कर। आज दुआ करें रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ करो, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल कर, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल कर, या अल्लाह जो बीमार है उनकी शिफा काबिल अता फरमाए, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानी को दूर करो, जो परहेज़दार है उन्हें बाहर करने से कबूल कर, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फर्म बता दो। ऐ अल्लाह आलमीन, ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकाम से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल करो, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करो, इन सब के इल्म में अमल में उमर में बरकत करो, इनके रोजगार में तरक्की करो, इनकी जाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करो। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحج القيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين